देवियों, सज्जनों, गीता का चैप्टर 16 की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसका नाम है दैव असुरी संपत्ति योग। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे हर इंसान के दोनों तरह के क्वालिटीज या नेचर होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, डिमोनिक भी और डिवाइन भी। इफ यू कैन अंडरस्टैंड आवर बोथ ऑफ द नेचर्स, इट इज ईजी टू डिस्कर्ड द वन एंड टू इंक्रीज द अनदर वन। तो उसी की चर्चा में हमने पिछले बार चर्चा की थी, एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसकी चर्चाएं हमने की, ये सब डिवाइन नेचर है ह्यूमन बींग का। अभय, फियरलेसनेस, प्यूरिटी ऑफ माइंड, डिवोशन टू मेडिटेशन एंड द नॉलेज, चैरिटी, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, यज्ञ, सेल्फ स्टडी, ऑस्टेरिटी, अपराइटनेस, ऑल आर द डिवाइन नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। आगे बोलिए, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, नॉन वायलेंस जिसको कहते हैं, हार्मलेसनेस, सत्य ट्रूथ, अक्रोध एब्सेंस ऑफ एंगर, त्याग द सेंस ऑफ रेनुंसिएशन, शांति ट्रैंक्विलिटी, अपैशुनम एब्सेंस ऑफ क्रूकेडनेस, दूसरों की बुराई करना, दया कंपैशन, भूतेषु प्राणियों में दया, और अलोलुप्त्वम नॉन कॉवटसनेस, मार्दवम जेंटलनेस पोलाइटनेस, ह्री मॉडेस्टी एंड अचापलम एब्सेंस ऑफ फिकलनेस। ये सब चीजें इंसान के अंदर डिवाइन नेचर होते हैं। अहिंसा हमने पिछले बार सुनी, अहिंसा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप फिजिकली वायलेंट नहीं है, सिर्फ दैट इज नॉट द ओनली नॉन वायलेंस। ये हमारा इंटेंशन पर डिपेंड करता है, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। अगर कोई वेजिटेरियन है कि मैं अहिंसा का पालन करने के लिए वेजिटेरियन हूं, इसका अर्थ नहीं कि वो नॉन वायलेंट हो जाता है। ये जरूरी है नॉन वेजिटेरियन होना, बट दैट्स नॉट एनफ। नॉन वायलेंस ये हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है, जहां हमारा इंटेंशन को समझना पड़ता है कि दूसरों के प्रति किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की इच्छा न रखना, एब्सेंस ऑफ इंटेंशन टू हर्ट एनीवन, दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। फिजिकली हम क्या करते हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो वेजिटेरियन है, किसी प्राणी का मांस नहीं खाते, पर उनका एक्शन में कोई वायलेंस की कमी नहीं दिखता, उनके व्यवहार में कोई वायलेंस की कमी नहीं दिखता, क्योंकि वो एक साधना है। फिजिकली हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू डू समथिंग फिजिकली, टू रिस्ट्रेंट फिजिकली और टू डू समथिंग फिजिकली, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट मेंटली। अहिंसा का भी वही स्थिति है। अगर मन में हिंसा भाव है, अगर मन में हमने ये कंट्रोल नहीं किया है, दूसरों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का भाव, तो तो फिर हम फिजिकली क्या करते वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है हमें इंडिविजुअली। हमें असुर बनने में बहुत देर नहीं लगता, और इसीलिए आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में बहुत सारे वेजिटेरियन भी होंगे जिनका ओवरऑल कैरेक्टर किसी असुर से कम नहीं है। क्यों? वो वेजिटेरियनिज्म सिर्फ आउटसाइड है, फिजिकली है, वो एक कंसेप्ट है, पर उनका व्यवहार में अगर वो व्यापार करते या ऑफिस में काम करते, लोगों के साथ डील करते, उनके व्यवहार में वो अहिंसकता नहीं दिखती, वो नॉन वायलेंस नहीं दिखता, कि किसी को हर्ट नहीं करना, ये नहीं दिखता। अगर नहीं दिखता है, सिर्फ चावल दाल खाते हैं, तो फिर ज्यादा उनके अंदर में कोई चेंजेस नहीं आता। इसका अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को वेजिटेरियन नहीं होना है, फिजिकली शांत नहीं होना है, पर उनके अगर कैरेक्टर में ही वो एग्रेशन है तो फिर वो हिंसा कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो अहिंसा को पालन करने का क्या तरीका है कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, हाउ कैन ए कॉमन मैन प्रैक्टिस दिस नॉन वायलेंस? द इजिएस्ट वे इज दूसरों को अपना जैसा समझो। एक्सेप्ट दस अदर्स आर जस्ट लाइक यू। अगर मुझे कोई मारता है तो दर्द होता है, मुझे कोई चीट करता है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे कोई अब्यूज करता है तो बुरा लगता है, तो मैं अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे बुरा लगना चाहिए। अगर आपके बच्चे तरक्की करते आप खुश होते हो, दूसरों के बच्चे तरक्की करते अगर आप में खुशी नहीं हो रही है, दैट मीन्स देर इज ए सेंस ऑफ वायलेंस इनसाइड यू। आपने उसको सप्रेस कर रखा होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप दूसरों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, अंटिल यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ अदर्स, यू कैन नॉट बी ए नॉन वायलेंट पर्सन। दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी होना, अगर ये हम प्रैक्टिस कर सके तो हम अननोइंगली नॉन वायलेंस की ओर गति करेंगे। इसी तरह सत्य है, ट्रूथ, ट्रूथ नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, ये सिर्फ सच बोल देना सच नहीं होता है देवियों सज्जनों। जैसा कि हम जनरली बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलो, और वो अलग बात है कि बड़े कितना सच बोलते हैं, मां बाप कितना सच बोलते हैं, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, पर बच्चों को जरूर सिखाते हैं कि सच बोलो। सच बोलना इज नॉट ट्रूथ, ट्रूथ स्पीकिंग इज नॉट ट्रूथ, ऑनेस्टी इन नेचर इज ट्रूथफुलनेस। वो नेचर मीन्स मेंटली, फिजिकली, ओरली, जब तीनों में एक जैसापन आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, सिमिलरिटीज आ जाए, देन यू कैन से दैट पर्सन इज ए ट्रूथफुल पर्सन और ऑनेस्ट पर्सन। जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में है। इट्स नॉट दिस इजी वे, ये कोई सहज नहीं है, आसान नहीं है कि आपके मन में क्या है और आप उसको पब्लिक में बोलते रहें। ऐसा होने लगे तो घर में मियां बीवी भी दो दिन नहीं टिक सकते। दूसरों की बात छोड़िए, इतने हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भाव, अच्छा भाव है कि अगर हम सब कुछ बोलने लगे जो मन में है वो वाणी पर आ जाए तो पति पत्नी का भी रहना दो दिन के लिए मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के साथ भी। तो सोसाइटी में रहते हैं, बहुत कुछ हमें कंट्रोल करना पड़ता है, दैट्स ओके। बट हमारा मन जितना ऑनेस्टी की ओर जाएगा, मन से जितना हम ऑनेस्ट होते जाएंगे उतना हम सत्य की ओर चलते जाएंगे। अक्रोध अब्सेंस ऑफ एंगर, हम सबको पता है दुनिया में अगर कोई चीज सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारा क्रोध होता है, गुस्सा, एंगर। द सुप्रीम एनिमी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। आप अगर गुस्सा आपके अंदर है तो आपके दुश्मन भी बहुत होंगे, आपके शत्रु भी बहुत होंगे। अब ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में रहते हैं, सोसाइटी में हैं, रिलेशनशिप में हैं, अगर आप में ज्यादा गुस्सा, जितना ज्यादा गुस्सा है आपके रिलेशनशिप उतना खराब होगा, आपके ऑफिस में, मंदिर में, सोसाइटी में, सब जगह आपकी स्थिति खराब होगी। पर सिर्फ इतना नहीं है गुस्से से, गुस्से से जितना सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है, जितना अपनी खुद की बर्बादी होती है, विनाश होता है, उतना और किसी का नहीं होता है। आप किसी पर गुस्सा कर जाते हैं, घर वाले समझ जाते हैं इसको गुस्सा ज्यादा आता है, जहां जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, पुरानी है, वो समझ जाते हैं ये गुस्सा वाला आदमी है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, उसने कोई इंटेंशनली नहीं कहा, नहीं किया, गुस्से में कर दिया, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जब हम गुस्सा करते हैं दूसरों पर। गुस्सा हमें सबसे ज्यादा नुकसान करता है, फिजिकली भी, मेंटली भी। हमारी डायबिटीज, हमारा हाइपरटेंशन, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट प्रॉब्लम, ये सब हमारा बढ़ता है जितना ज्यादा हम गुस्से में होते हैं। और दुनिया में जितना भी पाप लोग करते हैं, खराब काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, उसके पीछे मोस्टली चार रीजन होता है। एक होता है लोभ, ग्रीड, क्रोध, एंगर, मोह, इल्यूशन। मोस्टली तीन चीजें हैं जो व्यक्ति को बुरा करने के लिए मजबूर करता है। जब आप इल्यूशन में होते हैं, आप ड्रग लेकर के इल्यूशन में है, या अटैचमेंट के कारण इल्यूशन में है, तो आपसे बहुत कुछ बुराइयां होती है। जब टेररिस्ट लोगों को मारते, इट्स बिकॉज ऑफ देयर इल्यूशन। मारने से उनको स्वर्ग में जगह मिलता है, ये एक मोह है जिसके कारण वो मारते हैं। हम लोभ के कारण, लालच के कारण भी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, या गुस्से के कारण करते हैं। तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड और एंगर और इल्यूशन। उनमें से एक है गुस्सा। तो जितना गुस्सा व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका डिमोनिक नेचर आगे बढ़े, एक्सपोज्ड होगा, उतना ज्यादा उसका डिमोनिक नेचर नर्चर्ड होगा, पॉलिश्ड होगा। जितना गुस्सा कम होगा, उसकी जो दिव्यता है, जो देवत्व है, वो ज्यादा नर्चर्ड होगा। इसी तरह त्याग, हमने पिछले बार इसकी चर्चाएं की थी। त्याग मतलब रेनुंसिएशन, छोड़ने की प्रवृत्ति। पर छोड़ना ऐसा नहीं है, बहुत लोग बहुत दान करते हैं, त्याग करते हैं, पर वो त्याग से वो दिव्यत्व या डिविनिटी या डिवाइन नेचर नहीं आता। उल्टा त्याग करने वाले, डोनेशन देने वाले, चैरिटी करने वाले लोगों में भी वही सब प्रॉब्लम्स दिखता है जो ना करने वाले लोगों में दिखता है, क्योंकि वहां ईगो आ जाता है। ईगो दो तरह के काम करता है आपके पास, देवियों, सज्जनों। जब आप होड करते हो, जब आपके पास बहुत कुछ होता है, तो भी ईगो आता है, भाई आपके पास बहुत धन है, बहुत ज्ञान है, बहुत लोग हैं। जैसे पॉलिटिक्स में नेता आपके पीछे, बहुत बड़े लोक संख्या आपके साथ खड़ी हुई है, बहुत बड़े पावर पर हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं। ये जो होर्डिंग है, इकट्ठा करना है, ज्यादा करना है, उससे ईगो आता है। पर दूसरा ईगो, जिसको हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसका ठीक अपोजिट में भी आता है, जो छोड़ता है, छोड़ने का ईगो।
मैं प्रेसिडेंट बना, इसका अपना ईगो है, पर प्रेसिडेंटशिप मैंने छोड़ दिया वो कोई कम ईगो नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा धनश है, उसका ईगो है, पर मैंने करोड़ों रुपए डोनेशन में दे दिया, उसका भी कम बड़ा ईगो नहीं होता। ईगो जो जो एरोगेंसी है वो देने में भी आता है, लेने में भी आता है, दोनों तरीके से आता है। इसीलिए आप त्याग करते चले, पता चला कि आपके त्याग के साथ साथ आपकी आसुरिक प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। आपने अगर पुराण की कथाएं सुनी है, असुरों की, राक्षसों की, रावण की, वो सब कुछ करते थे जो एक अच्छे आदमी को करना चाहिए। वो भी यज्ञ करते थे, वेद पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे, सब करते थे, पर वो राक्षस कहलाते थे, दूसरी देवता कहलाते थे। एक राम था, एक रावण था, दोनों के एक्टिविटीज में बहुत कम फर्क था। दोनों यज्ञ करते थे, दोनों वेद को समझते थे, दोनों दान पुण्य करते थे, फर्क कहां था? फर्क था कि आपके करने के पीछे जो इंटेंशन है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें फर्क था। एक कुछ लालच के कारण अच्छा काम कर रहा है, एक कुछ पाने के लिए यज्ञ कर रहा है, एक यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है क्योंकि उसको वर मिले, और इतना वर मिले कि वो ताकतवर बने, सबको वो डोमिनेट कर सके। दूसरा तपस्या करता है, यज्ञ करता है कि अपने आप को वो मिटा सके, ईश्वर को पा सके, अपने आप को जान सके। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो त्याग के पीछे भी वही भाव है। पिछले बार हमने आपको स्टोरी सुनाई, जनक की स्टोरी। जनक राजा थे, पर ऋषियों से भी बड़े ऋषि थे। इसी तरह शांति ही, शांति का मतलब ट्रैंक्विलिटी, मन शांत हो आपके अंदर। मन शांत अपने आप में होता नहीं है, शांति एक रिजल्ट है बहुत सारे चीजों का। आपके अंदर या मेरे अंदर, हमारे अंदर अगर बहुत कुछ चल रहा होता है तो शांति नहीं होगी। इसलिए जब आप कोई भी मंत्र पाठ करते हैं, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में हमेशा तीन बार हम शांति बोलते हैं, शांति ही शांति ही शांति। क्यों तीन बार बोलते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में, ध्यान रखिए, शांति एक नेगेटिव वर्ड है। शांति का मतलब होता है दुख से निवृत्ति, निगेशन ऑफ पेन्स प्रॉब्लम्स। आनंद जो है वो पॉजिटिव है। हमारे जीवन में नेचुरली बहुत सारे दुख होते हैं, और वो सारे दुखों को हमारे पूर्वजों ने, शास्त्रकारों ने तीन तरह से क्लासिफाई किया। एक आधी भौतिक है, पेन्स कॉज्ड बाय नेचुरल एलिमेंट्स, आपको कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी भी संसार के किसी भी चीज के कारण जो आपको दुख होता है, आपके ऊपर कोई फल गिर जाता है, या किसी भी कारण से आपको कांटा चुभ जाता है, कुछ भी होता है, एनीथिंग, दूसरों के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड आधी भौतिक। दूसरा है आधी दैविक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम रोक नहीं सकते। पेन कॉज्ड बाय नेचुरल एलिमेंट्स, तो पहला वन था मैटेरियल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, टर्नाडो आता है, कहीं आग लग जाता है, लाइटनिंग होती है, बारिश होता है, हमारे हाथ में नहीं है। उसके कारण जो हमें दुख होता है उसे हम आधिदैविक कहते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक, फिजिकल या मेंटल, द पेन कॉज्ड बाय सेल्फ। दिव्यो सज्जनों, हमारे जीवन में 90% जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख है, द पेन कॉज्ड बाय सेल्फ। वो हमारे शारीरिक मानसिक बीमारियां हो या मन में रोज चलने वाले असंख्य अशांतियां हो, वो हमारे अपना क्रिएशन होता है, नोइंगली या अननोइंगली। मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे जो को वर्कर है उसको प्रमोशन मिला, मुझे नहीं मिला। जब मुझे प्रमोशन नहीं मिलता मैं दुखी होता हूं, उसका रीजन ये नहीं होता है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला। अगर किसी को भी नहीं मिलता तो हमें भी दुख नहीं होता, पर हमें दुख होता है जब मेरे को वर्कर को मिला। मेरे एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है कि मुझे नहीं मिला, पर रीजन है कि दूसरे को मिला। ये किसी ने किया नहीं है कुछ हमारे साथ, ये हमारा अपना क्रिएशन है, मेंटल क्रिएशन है। जेलेसी हो, एरोगेंस हो, ईगो हो, फियर फैक्टर हो, जिसके कारण हमारे अंदर दुख आता है। हमारे बच्चे एवरेज हैं, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, पर दुख तब होता है जब मेरे रिलेटिव में, भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, दूसरों के बच्चे मेरे बच्चे से ज्यादा टैलेंटेड निकल जाते हैं। अगर उनके बच्चे भी मेरे बच्चे जैसा या कम होते तो मुझे कभी नहीं दुख होता, मैं अपने बच्चे पर भी प्राइड फील करता। हमारे जीवन के सुबह से लेकर शाम तक जितने तरह की अशांति है, उस अशांतियों में 75-90% कारण हमारा सेल्फ होता है, आध्यात्मिक होता है। इवन हमारी बीमारियां, हमारे मोस्ट ऑफ बीमारियों का कारण हमारा लाइफस्टाइल है। अब तक तो हमें समझ में नहीं आता था, अभी भी ये बड़ा मिस्ट्री है कि एक इतने तरह के कैंसर क्यों होने लगे हैं। अब धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन होने लगा है, पता चला है कैंसर की भी वही कारण है जो आपके डायबिटीज के कारण है, जो आपके ब्लड प्रेशर का कारण है, जो आपके हार्ट प्रॉब्लम का कारण है, आपकी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल, हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, कब खाते हैं, नींद कितनी लेते हैं। तो ज्यादातर दुखों का कारण सेल्फ है। तो जीवन में जो अशांति है, और अशांति के तीन तरह का कारण है, मैटेरियल कॉज या नेचुरल कॉज, और जो सेल्फ कॉज है जहां मैं खुद कारण हूं। इन सब में एक चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो नेचर के साथ, पर वो सबके साथ नहीं घटता देवियों सज्जनों, किसी किसी के साथ घटता है, कभी कभी घटता है। ये डे टू डे लाइफ को हमारा वो इफेक्ट नहीं करता। यहां भी कभी कैटरीना वो आया था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, पर कभी आता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है, पर जो डे टू डे लाइफ में हम अशांत हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस सेल्फ मेड है। इसका अर्थ नहीं कि हम बैठ करके खुद बना रहे थे, नहीं, ये नेचर है हमारा, और ये नेचर को दूर कर सके, ये नेचर जो हमें असुर की तरह ले जाता है उसको कंट्रोल कर सके तो हम देवत्व की ओर चलेंगे। तो शांत होना इसका मतलब है कि आपने बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल किया है इसीलिए आप शांत हैं, आपके अंदर शांति है, ये देवत्व है। इसी तरह अपयिशुनम, दूसरों की बुराई करना, जो कि कम बहुत मोस्ट ऑफ ह्यूमन इंसानों का, ह्यूमन बींग का नेचर है। अगर आप कोई ऐसा मित्र या फ्रेंड ढूंढें जो आपके पीछे आपकी बुराई नहीं करता, तो यकीन मानिए आपको कोई फ्रेंड मिलेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत ये ह्यूमन नेचर है, दूसरों की बुराई करना ये ह्यूमन नेचर है, पर ये आसुरिक प्रवृत्ति है, ये डिमोनिक नेचर है। ये दूसरों का नुकसान कम करता है, खुद के कैरेक्टर को खराब करता है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं उनके पीछे किसी कारण से नहीं, किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे कुछ लोग खेल कूद करके एंजॉय करते हैं, कुछ लोग को एक्सरसाइज करके एंजॉय करते हैं, कुछ लोग टीवी देख के एंजॉय करते हैं, कुछ लोग दूसरों की बुराई करके एंजॉय करते हैं, और ज्यादातर लोग दूसरों की बुराई टाइम पास के लिए करते हैं। पर जो टाइम पास करने के लिए बुराई करना, ये ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ आवर नेचर। फिर हमें धीरे धीरे दूसरों की अच्छाई दिखना बंद होने लगता है। जब दूसरों की अच्छाई दिखना बंद होने लगता है तो फिर आप उनके बारे में फिर कुछ एक्शन लेने के लिए भी कोशिश करते हैं, और जो कुछ आपका एक्शन होगा ऑलवेज भी नेगेटिव। इसी तरह दया भूतेषु, ये नहीं कहा कि कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, इट सेड कंपैशन टुवर्ड्स बीइंग्स भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। ये नहीं कि ये मेरे कम्युनिटी के लोग हैं तो मेरा कंपैशन है, ये छोटा बच्चा है इसलिए मेरी दया है, ये बुजुर्ग है मेरी दया है, ये मेरा पेट है, ये कुत्ता है बिल्ली है मेरी दया कंपैशन है। ये ड्रामा है, ये एक्टिंग है। अगर आपके अंदर दया है तो वो स्ट्रीट डॉग के प्रति भी दया होगी, कंपैशन होगा, वो दिव्यत्व है। क्योंकि मेरा पेट डॉग है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको कोई डॉग भी नहीं बोल सकता, वो मेरे बच्चे जैसा है। ये आपकी कोई बड़प्पन नहीं है, ये अटैचमेंट है। यू कैन नॉट से दैट आई एम ए कंपैशनेट पर्सन सो आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई ओन डोमेस्टिक पेट। नो, इट्स इल्यूशन। कंपैशन जब आता है, दया जब आती है, तो प्राणी मात्र के प्रति आता है, संसार के हर कुत्ते के प्रति, हर चींटी के प्रति, हर इंसान के प्रति, हर किसी के प्रति। उसमें फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ये किस कम्युनिटी का है, किस कॉलर का है, किस कास्ट का है, किस ग्रीड का है, किस ब्रीड का है, नहीं, सबके प्रति दया भाव देवत्व है, और डिस्क्रिमिनेटरी दया भाव ये असुरत्व की ओर ले जाता है आदमी को। अलोलुप्त्वम, लालच ना होना। लालच का अर्थ जो हम थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, गलत समझते हैं, कि भाई दूसरों के चीजों पर बुरी नजर ना डालना, ये सही है, ये अप्रोप्रिएट है, कि भाई दूसरों के जो चीज है उसको पाने की इच्छा ना करना, ये लालच है। पर ये एक सोशियल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है सोसाइटी में आपको अच्छा रहने के लिए, पर ये स्पिरिचुअली ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन है लालच, मतलब आपकी जरूरत से ज्यादा जब आप होर्ड करने लगते हो, पाने की इच्छा रखते हो, वो लालच में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपको फिर नुकसान करता है। जितनी व्यक्ति की जरूरत है उससे ज्यादा पाने की इच्छा फिर व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी लेता है। जितनी मेरी एबिलिटी है, क्षमता है कमाने की, और जितनी मेरी जरूरत है, उन दोनों के बीच में अगर बैलेंस्ड है तो मैं नॉर्मल हूं, पर उससे ज्यादा अपनी एबिलिटी से ज्यादा पाने की इच्छा, अपनी जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा, ये व्यक्ति को लालची बनाता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? व्यक्ति अगेन डूइंग ऑल द बैड थिंग्स, इन्वॉल्विंग इन ऑल द बैड थिंग्स। मार्दवम, पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस, ये जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा कोमलता है उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में जितनी ज्यादा कोमलता हो, नेचुरल सॉफ्टनेस, नेचुरल जेंटलनेस, उतना व्यक्ति देवता जैसा हो जाता है। जितने व्यक्ति के अंदर रूडनेस हो, क्रुएलिटी हो, हार्शनेस हो, वो कितना भी अच्छा आदमी हो, अच्छा काम करता हो, वो उसको हिंसक बनाता है। अननोइंगली उसको पता नहीं चलता कि वो कितने लोगों को हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। जब हम रूडली बात करते हैं, कोई बिहेवियर कर ऐसा व्यवहार दिखाते हैं, तो कोमल होना या विनम्र होना, हम्बल होना, एंड अगेन आई एम सेइंग इट शुड बी नेचुरल, आर्टिफिशियली कल्टीवेट करना से कुछ फायदा नहीं होता है। लोगों को समझ में आ जाता है कौन आर्टिफिशियल है, कौन नेचुरल है। और बात हम सोशल नहीं कर रहे हैं, हम तो स्पिरिचुअल कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं। मुझे मेरा, मेरे प्रकृति में, मेरे नेचर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर कोई चीज में हिपोक्रेटिकली करता हूं, ऊपर से करता हूं, अंदर से नहीं करता हूं, मेरे अंदर कोई अच्छा भाव नहीं है पर ऊपर से मैं कोशिश करता हूं पोलाइट बनने के, उससे सिवाय आपके ही सरदर्द होने का, सामने वाले को तो कुछ फर्क पड़े ना पड़े, सरदर्द तो आपको ही होता है। कभी आपने देखा है, कभी आप कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं या आपकी कोई प्रोफेशनल मीटिंग होती है जहां आप जाते हैं, आपको पूरे समय मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है मजबूरन, उसके बाद जब आप घर आते हैं आपकी सब दर्द करने लगता है। क्यों? बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल थिंग, योर बॉडी इज नॉट हैबिचुअल विद दैट, आपको करना पड़ता है। पर अगर आप बाय नेचर पोलाइट हैं, हम्बल हैं, सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज आर्टिफिशियल थिंग्स, फिर आपको रात को ये दर्द होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मुस्कुराने की भी जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनालिटी अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा कि आप कितने कितने जेंटल हैं, आप कितने वेलकमिंग हैं, वो अपने आप पता लगेगा। क्योंकि हम धीरे धीरे, कोई भी रीजन बताएं, किसी भी कारण से हमारे अंदर वो रूडनेस आ चुका है, तो जहां जरूरत पड़ता है फिर मजबूरन हमें उसको कल्टीवेट करना पड़ता है, और वो भी ऊपर ऊपर के। जिस व्यक्ति के चरित्र में, प्रकृति में वो पोलाइटनेस आ चुका है, अंदर जेंटलनेस आ चुका है, वो देव बन जाता है। नहीं आया है, रूडनेस है, वो असुरत्व की ओर गति करता है। बाकी किसी भी चीज को आप दिखाने के लिए करते हैं, वो तो किसी को फायदा नहीं पहुंचाता है। अगला है हरी, शर्माना, लाज करना, लाज करना, मॉडेस्टी। किससे? शास्त्र और समाज के रूल्स को ना तोड़ने में या तोड़ने में शर्म करना। एक सोशल सिस्टम है, फैमिली का, सोसाइटी का, देश का, कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है जो शास्त्र में बताया गया है। बस शास्त्र शब्द से हमेशा आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मत लीजिए। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, जो आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो सब शास्त्र है। शास्त्र को फॉलो करना, उसको तोड़ने में शर्म आना, ये देवत्व है। कैसे? जनरली लोगों को लगता है जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, सोशियली सोशियल टर्म्स को फॉलो करते हैं, वो भेड़ चाल की तरह चलते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना, रिवोल्ट करना, ये क्रांतिकारी है, परिवर्तन है, वो एक डिफरेंट चीज है। पर अगर आप रूल्स रेगुलेशन ना हो, शास्त्र ना हो, तो हमारा लाइफ में मिजरेबल हो जाएगा। सिर्फ हमारा नहीं, दूसरों के लिए भी मिजरेबल करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, रोड में आप अमेरिका के रोड में चलते हैं, आपका रूल है कि आपको राइट साइड में ड्राइव करना है। आप कहेंगे क्यों, ये कोई जरूरी है? ये तो मेरे फ्रीडम पर अटैक है। व्हाई शुड आई फॉलो द रूल्स? इट्स माय मर्जी, आई कैन ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड, राइट साइड, इट्स अप टू मी। तो आप लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, दूसरों को भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। एक सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होना जरूरी है, एंड एवरीवन शुड फॉलो दैट। और उसको तोड़ने में, उस रूल्स को ब्रेक करने में एवरीवन शुड फील शेम्ड। अगर वो शेम फीलिंग नहीं आता है किसी रूल को तोड़ने में, तो आप नुकसान करने वाले हैं, खुद के भी दूसरों के भी। पर ध्यान रखिए, कोई भी सोशल रूल्स रेगुलेशन इटर्नल नहीं होता, कोई परमानेंट नहीं होता। हमारे शास्त्रों का भी वही स्थिति है। हमारी जो सुपरस्टिशियन इसीलिए पनपते हैं, 2000 साल पहले लिखे गए कोई बात शास्त्र में, आज भी हम उसको एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सुपरस्टिशियन। बट उस समय उसकी वैलिडिटी थी, उसके हिसाब से लोगों को चलना था। आज के समय के हिसाब से नए शास्त्र लिखे जाते हैं, नए शास्त्र बनाए जाते हैं, एंड एवरीवन शुड फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसीलिए नहीं है कि उसको ना करने से कोई पाप या पुण्य होगा, उसको ना फॉलो करने से सोसाइटी में या जहां हम जीत रहते हैं वो सोसाइटी इंबैलेंस्ड हो जाएगा। आपके यूएसए में कुछ रूल्स हैं, आपको इनकम टैक्स भरना है, ऐसे तो यू हैव टू फिल इट, आपको वो करना चाहिए। अगर कोई ना करे तो सोसाइटी कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगा? आप रोड के रूल फॉलो ना करें, ऑफिस के रूल फॉलो ना करें, आप एक मीटिंग में बैठे, आज हम सब सभा में बैठे, यहां बैठे, एक डेकोरम है, एक रूल है, एक जना बोलता है बाकी लोग सुनते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि जो बोलता है मैं बोल रहा हूं, मैं आप में से सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं है। बैठे हुए नीचे में से आप में से बहुत ज्यादा लोग बहुत सारे चीजों पर, जिस सब्जेक्ट पर मैं बोल रहा हूं उस पर भी आप लोग, आप में से बहुत लोग ज्ञानी होंगे। पर एक डेकोरम है, एक को बोलने के लिए मिला है, वो बोलता है, हम सुनते हैं। अगर कोई सोचे क्यों ये मेरे से कम जानता है, ये क्यों बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, तो चार पांच लोग बोलने लग जाए तो क्या होगा सोसाइटी की दशा? यही है रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करने में शर्म आना। और बच्चों को भी यह सिखाना, शर्माना नहीं है। हमारे बच्चे जब शर्माते हैं, किसी को स्टेज पर खड़ा कर दो तो उसको संकोच आता है बोलने में, किसी के सामने बोलने में संकोच आता है। ये संकोच नहीं है, ये शर्म नहीं है। शर्म है कि रूल्स को, सामाजिक व्यवस्था को ब्रेक करने में जब आपको गिल्टी फीलिंग हो, वो शर्म है, और वो आपको देवत्व की ओर ले जाता है। और आखिर में अचापलम, आपके व्यवहार में, जिस व्यक्ति के व्यवहार में जितना स्टडीनेस हो, जितना फॉर्मनेस हो डिसीशन लेने में, उस डिसीशन को इंप्लीमेंट करने में, उस व्यक्ति में देवत्व उतना ज्यादा है। ये जो फ्रिकलनेस है वो व्यक्ति को खराब और ले जाता है। आगे की चर्चा में हम सुनेंगे। एक साथ मेरे साथ मिलकर बोलिए, तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवी। आ जाइए, मभिजातस्य भारत। तो इस सारे मिला के तीन श्लोकों का कंबाइंड है जो नेक्स्ट टाइम इसकी चर्चा करेंगे। तेज विगौर, क्षमा फॉरगिवनेस, धृति फोर्टिट्यूड, शौच प्यूरिटी क्लीनिनेस, अद्रोह अब्सेंस ऑफ हैट्रेड, नातिमानिता अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम प्राइड, दीज ऑल दीज जो हमने पिछले दो श्लोकों में सुना और ये श्लोक में, ये सारे उस व्यक्ति का लक्षण है जिसमें देवत्व हो। अगर किसी में ये सब लक्षण है तो वो देव है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे असुर होने का क्या लक्षण है। हमारे अंदर वो असुरत्व है, हमारे में से लोग असुर हैं और हमारे अंदर भी वो असुर है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना है, आज कोई